धीरज धर्म हुआ। सौगुनी सजा है तिरसठ जनों में, और जितनी सजा थी उसके मुकाबले ब्राह्मण बनने के बाद सौगुनी सजा बढ़ जाती है, और उसका प्रत्यक्ष रिजल्ट आता है अवस्था नीचे गिर जाती है। जो याद आना चाहिए वो याद नहीं आती। कहते हैं बाबा का चेहरा भी भूल जाता है। नहीं तो जो चीज आंखों से देखी जाती है निश्चयात्मक बुद्धि से वो याद जरूर आती है। सर्विस के बदले न चाहते हुए भी डिस सर्विस हो जाती है। चाहते हैं कि गुणों की धारणा हो लेकिन माया अवगुणों को प्रत्यक्ष कर देती है, कहाँ देती है। समझते हैं कि हम ज्ञान सुनाते हैं लेकिन देवहानि के कारण ज्ञान अर्थात शक्ति को समझाने के बदले, शक्ति बाप का परिचय देने के बदले असत्य को प्रत्यक्ष करने लग पड़ते हैं, अपने से योग जुटाई लेते हैं। सारी कार्रवाई उल्टी हो जाती है। आए थे हर भजन को होटल लगे कपास, ऐसी हालत हो जाती
है। बाबा आपने कहा दिन प्रतिदिन नई नई बातों का सुनाना कम होता जाएगा
है?
और दिन प्रतिदिन नई नई बातों का सुनाना कम होता जाएगा, और एक मंत्र में कहा दिन प्रतिदिन ये नॉलेज बहुत बढ़ता जाएगा, तो क्या हुआ?
प्रतिदिन नई नई बातों का सुनाना कम तब होता जाएगा जब भगवान बाप संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा, और जो ब्राह्मण आत्मा है वो विस्तार में जाने की बजाय काहे में टिकना शुरू करेंगी, सार बिंदु रूप में टिकना शुरू कर देंगी। उस समय के लिए बोला है, बाकी वर्तमान समय आज से ही अब तक ज्ञान का विस्तार होता आया है। जैसे कि कोई वृक्ष बीजारोपण होने के बाद जब तक उसमें दोबारा फल प्रत्यक्ष हो, बीज प्रत्यक्ष हो, और वो बीज सारे वृक्ष से अपने को डिटैच करता हुआ प्रत्यक्ष हो जाए, तब तक ज्ञान का विस्तार होता रहता है, और वो विस्तार चोटी के ब्राह्मणों के लिए महसूस होता है, दुनिया वालों को महसूस नहीं होता है। और
आगे साहब के मुंह में तो प्रयास होगा
है, आखिरी हाँ जी माउंट आबू का हाँ हाँ जी जो भी परम धाम जाने वाले हैं नंबर वार उनमें सिर्फ 9 लाख हाथ में ऐसी है जो जमुना के कंठे पर नई दुनिया स्थापन होगी वहां ट्रांसफर होगी। उनमें भी 4.5 लाख होंगी जन्म देने वाली साकार में और विनाश होने से पहले वो 4.5 लाख अव्यक्त स्वरूप में होंगी, इन आंखों से देखने में भी नहीं आवेगी। तो 4.5 लाख तो जमुना के कंठे पर ट्रांसफर हो जाएंगे, वो पहले ही ट्रांसफर होंगे या विनाश होने के बाद ट्रांसफर होंगे? पहले स्थापना होगी, स्थापना वाले पहले स्थिर होंगे नई दुनिया की स्थापन करने के लिए, या जिनका विनाश होना है परम धाम में पड़े रहना है उनका काम पहले होगा? इतनी बात तो समझ में आती है ना? हाँ जी
इसके बाद
है
इसके बाद ये तो इसके बाद
2036 के बाद हाँ
षष्ठी खत्म हो जाएगी।
षष्ठी खत्म नहीं होती है, सृजन का कार्य खत्म नहीं होता है। परम धाम आखिरी आत्मा जावेगी और पहली आत्मा आवेगी, ये चक्र लगातार चलता रहता है। षष्ठी चक्र रुकता नहीं है, खत्म नहीं होता है। अरे स्थूल में उस समय उन आत्माओं की बात है जो आत्माएं सजा खा करके परम धाम में बैठेंगी, अंत तक वो आत्माएं वहां बुद्धि योग से ही रहेंगी। स्थूल शरीर से तो उन आत्माओं को वहां पहुंचना भी नहीं है, और जिन आत्माओं को स्थापना का कार्य करना है वो तो 7 दिन का आखिरी विनाश होने से पहले ही पहुंच जावेंगी। जहां बर्थ में उनको आच्छादित होकर रहना, सारी दुनिया में बर्फ बर्पा हो जावेगी। इतनी घनघोर मूसलाधार बरसात होनी है, और
मधुबन को मधुसूदन कहे, लेकिन जो आत्मा
मधुबन को मधुसूदन नहीं कहे,
नहीं कोई भी आत्मा निमित्त बनेगी मधुबन को बने की है,
है?
कोई भी आत्मा मधुबन घुमाने के लिए निमित्त बनेगी तो कन्या का जो कन्या समय पर पाते हैं उनका भाग ज्यादा बनेगा, जो मधुबन घुमाएंगे उनका भाग ज्यादा बनेगा।
मधुबन उसे कहा जाता है जहां मधुसूदन भी मौजूद हो प्रैक्टिकल में, और बेहद की वैरागी व्यक्ति भी मौजूद हो संगठन रूप में, और बेहद की मिठास वृत्ति भी बच्चों में मौजूद हो, उसको मधुबन कहा जाता है। ये शहद की मक्खियों का जैसे संगठन है, शहद की मक्खियां दो प्रकार की होती है, एक छोटी मक्खी और एक बड़ी मक्खी जिसे डिंगारा कहते हैं। छोटी मक्खी उसका शहद आंखों की ज्योति को बढ़ाता है, उसमें प्योरिटी ज्यादा होती है। दोनों ही प्रकार की मक्खियों में संगठन जरूर होता है, संगठन अर्थात प्योरिटी। एक में योग सेवन से प्योरिटी आती है और जो छोटी मक्खियां होती है उनमें जन्मजात प्योरिटी होती है, जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं प्योरिटी के, इसलिए आंखों की रोशनी भी तीव्र होती है और उनका शहद औरों की भी रोशनी को तीव्र करता है। तो मधुबन इस स्थूल मकान को नहीं कहा जाता। हाँ, मकान और मकान देने वाला निमित्त बन सकता है, उस निमित्त स्थान में कन्याएं समर्पित होकर रह सकती है, लेकिन समर्पित होकर के रहने वालों में कोई जरूरी नहीं है कि सब प्योरिटी का पालन करने वाली हो। प्योरिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, अगर आपस में भी एक दूसरे में अटैचमेंट लगाव पैदा हो जाता है तो वो संगठन तोड़ने वाली है, मधुबन के वाइब्रेशन को बनाने वाली है या उखाड़ने वाली है, उखाड़ने वाली साबित होती है। मकान देने वाला कोई जरूरी नहीं है कि समर्पित जीवन व्यतीत करने वाला ही हो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आज में समर्पित भी हो सकता है और अंत में तमो प्रधान बन करके मधुबन को और स्थान को बिगाड़ने के निमित्त भी बन सकता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि मकान देने वाला मधुबन बनाता है या सरेंडर होने वाली कन्याएं मधुबन बनाती है, नहीं, दोनों ही मधुबन बना सकते हैं, लेकिन मधुबन संगठन को कहा जाता है। प्योरिटी से यूनिटी बनती है, उनकी निशानी होगी कि आपस में उन्हों का बहुत प्यार होगा शहद की मक्खियों की तरह, जैसे शहद की मक्खियां छोटा सा बंगला बनाती है, उनका दिल बड़ा होता है तो छोटे स्थान में भी कितनी मक्खियां पलती हैं। तीन पैर पृथ्वी उनके लिए काफी है। कोई प्रकार का झगड़ा झगड़ने की बात नहीं है। झगड़ती है तो इससे साबित है कि वो मधुवनवासी नहीं है। बाहर की दुनिया में उनकी बुद्धि भटक रही है। और
भगवान ही समझता
जो अज्ञानी आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो अभी भी ये कहते हुए और समझते हुए देखी जा सकती हैं, चाहे वो सरेंडर्ड वर्ग में हो और चाहे वो नॉन सरेंडर्ड ब्राह्मण परिवार में हो। उनकी धारणा यही होती है कि बाबा ही सुख देता है और बाबा ही दुख देता है। ऐसी आत्माएं कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी? ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें ज्ञान के नाम पर अज्ञान ही अज्ञान भरा हुआ है? अल्लाह मियां ने सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने चांद बनाया, अल्लाह मियां ने फर्श बनाया, अर्श बनाया, सारी अंधश्रद्धा की बातें सुनाते। कर्म की चोरी का नाम निशान नहीं। तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं होता है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे कन्वर्ट होने वाले 90% आत्माएं भरी हुई हैं, जो ज्ञान सूर्य की रोशनी में पलने वाली नहीं है। चंद्रमा इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन आदि के अंधकार में पलने वाली है। उनकी ये धारणा बनती है कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। ये बात बुद्धि में नहीं बैठेगी कि ड्रामा हमने बनाया है। 63 जन्मों की बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। अगर ये बात बुद्धि में रहे तो कभी भी एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, दूसरे की हुई गलती को, अपने नजदीकी आत्मा की गलती को अपनी गलती समझेंगे। नहीं तो बुद्धि में बैठना चाहिए कि जब हम लक्ष्मी नारायण समान बन जावेंगे तो हमारे संसर्ग संपर्क में कोई भी असुर आत्मा नहीं आ सकती। आसुरी दुनिया अलग हो जाएगी और देवता सुब्राह्मण वर्ग की आत्माओं की दुनिया ही अलग हो जाएगी। दूध दूध में मिलकर रहता है, कीचड़ कीचड़ में मिलता रहता है, पानी पानी में जाकर मिलता है। अज्ञानियों की भाषा ही अलग होती है और ज्ञानियों की भाषा अलग होती है। और
बाबा गांधी जी का चित्र नोटों पर क्यों बेकार
है?
गांधी जी का चित्र नोटों पर क्यों बेकार है?
वोटों पे,
नोटों पे, पैसों पे
है। जो जिस धर्म का होता है वो अपने धर्म पिता को, और धर्म की जो बड़ी बड़ी फॉलो करने वाली आत्माएं हैं उनको विशेष मान्यता देता है। ऐसे ही कौरव गवर्नमेंट भी है जो कौओं की तरह शोरगुल बहुत करती है, दुनिया की लास्ट तमो प्रधान गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट, और उसके फॉलोअर्स उनकी मान्यता ये होती है कि हमको स्वतंत्रता देने वाले हमारे देश के निर्णायक, हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका फोटो छपाते रहते हैं। वास्तव में हर धर्म में ऐसे ही होता चला आया। इसका फाउंडेशन यहां पड़ता है, ब्राह्मणों की संघ मिली दुनिया में। अभी पढ़ रहा है, पहले गांधी जी का चित्र छपाते थे, आगे चल के ऐसा भी होगा कि गांधी जी के फॉलोअर्स में जो बड़े बड़े हैं उनके भी फोटो छापने लग पड़ेंगे। ऐसे ही होता है गिरती हुई दुनिया में। और
जो भारत भर में कथा जो दिखाई है भगवान की,
जोर से बोलो। हाँ,
सत्यनारायण की कथा दिखाई है।
हाँ जी।
और शादी जब होती है तो माता पूजन को दिखाते हैं, इसका क्या अर्थ है?
सत्यनारायण की कथा होती है, फिर शादी होती है तो
सबसे पहले माता पूजन होती है।
माता पूजन?
हाँ, माता पूजने जाते हैं।
सत्यनारायण कहाँ रह गए? बात तो सत्यनारायण से शुरू की है।
पहले तो कथा बताई सारे भारत में।
हाँ,
कथा होती है शादी के बाद, शादी के पहले माता पूजन को बताइए।
तो संगम हुई ब्राह्मणों की दुनिया में भी, जब लक्ष्मी नारायण की शादी होती है या शंकर पार्वती की शादी होती है, संपन्न स्टेज आती है, उससे पहले जय माता दी होती है या नहीं होती है? होती है। इसलिए भक्ति मार्ग की दुनिया में भी जय माता दी होती है। और
बाबा, साईं बाबा के और समीरपति बाबा
है?
कौन सा बाबा हो?
साईं बाबा की क्या?
साईं बाबा और समीरपति बाबा।
क्या बोल रहे हैं?
साईं बाबा और वो समर्पित बाबा, कौन सा बाबा है?
समर्पित माई।
साईं बाबा और समर्पित बाबा,
कौन सा बाबा है
ये समर्पित बाबा? कौन सुना है कोई? अरे किसी ने तुम्हारी बात समझी हो तो हमको बताए।
साईं बाबा।
हाँ, साईं बाबा तो समझा।
हाँ, और उनके साथ में एक और बाबा बताएंगे, वो समीर पद बाबा।
कौन सा बाबा बताए?
समर्थ बाबा बताए बाबा
है।
एक सीरियल आता है जिसमें साईं बाबा करके एक बाबा रहते हैं और एक और स्वामी समर्थ करके रहते हैं, तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो स्वामी समर्थ है वो कौन से बाबा है।
समर्थ गुरु रामदास को कहा जाता है और साईं बाबा को साईं बाबा कहा जाता है। साईं बाबा में भी दो प्रकार के साईं बाबा प्रसिद्ध हैं, दाढ़ी मूछ वाले साईं बाबा और एक बड़े बड़े बालों वाले बाबा। तो जो समर्थ गुरु रामदास कहे जाते हैं, वो तो तो संगम युग में राम वाली आत्मा की यादगार है, वास्तव में उनको भी समर्थ नहीं कहेंगे। उन्होंने आकर के कोई नई दुनिया नहीं बना दी, उनके आने के बाद भी दुनिया कैसी बनती रही, नई बनी और ही पुरानी होती गई और ही पुरानी होती गई। तो भक्ति मार्ग में जितने भी बाबाएं हुए हैं वो वर्तमान संगम युग की यादगार मात्र हैं। असली स्वामी बाबा, समर्थ बाबा वो है जो समर्थी का काम कर दिखावे। वो काम है नरक को स्वर्ग बनाने का। इस काम में सब मनुष्य गुरु बाबा असमर्थ रहे, इसलिए नाम भले डाला हो समर्थ बाबा, लेकिन फिर भी समर्थ बाबा साबित नहीं हुए। और
बाबा, बाबा ने कहा कि बाप भी भारत में ही आते हैं, कृष्ण भी भारत में ही आते हैं, सीढ़ी भी भारत की है और भारत की ही भूल सभी जगह फैलती है, इसका क्या?
भारत की ही भूमि
भूल सभी जगह फैलती
है,
इसका क्या?
पुराने से पुराना देश कौन सा है? भारत ही है। जब भारत देश था तो और सभी देश समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। भारत देश में ही आबादी थी, मनुष्यों की जनरेशन देवताओं के रूप में फैली हुई थी। फिर द्वैतवादी युग शुरू हुआ, देवताएं तो अद्वैत देवता थे। जब द्वैतवादी युग शुरू हुआ तो एक भारत देश से दूसरा देश निकला, भारतवासी जाकर के उस देश में बसने लगे, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे अनेक देश समुद्र के गर्त से बाहर आते गए और भारत की देवी देवताओं की आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हुई विदेशों में फैलने लगी। भारतवासी कन्वर्ट होकर के दूसरे देशों में और दूसरे धर्मों में जाते रहे। ये भारत की धूल है, धूल कहेंगे देह अभिमानी की मिट्टी जो द्वापर से शुरू होती है। देह अभिमानी की भारत की मिट्टी सारे विदेशों में फैल गई और दुनिया की आबादी बढ़ गई। अभी फिर उल्टा होने वाला है। जो देश पहले नहीं थे वो अब भी नहीं रहेंगे, समुद्र के गर्त में समा जावेंगे। जो देश पहले भी था और अभी भी है वो आगे भी रहेगा। ये अविनाशी देश भारत है। इसका कभी भी नाश नहीं होता क्योंकि यहां पवित्रता को बहुत मान दिया जाता है। दूसरे देशों में पवित्रता का खंडन किया जाता है, पवित्रता को मान मर्तबा नहीं दिया जाता, डायवोर्स की प्रथा को बढ़ावा दिया जाता है। और दसवीं के माँ बाप का नाम नहीं बताते। आपकी जानकारी कम है। भक्ति मार्ग में कहते हैं प्रतिभान किशोरी, क्या कहते हैं? वृख, वृख माने बैल और भान माने सूरज। ये दोनों शब्द मिलाने से बनता है प्रतिभान, और किशोरी माने कन्या। पहले किसकी कन्या है? वृख बैल की कन्या। ब्राह्मणों की दुनिया में बैल कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो अभी भी ब्रह्मा की चलाई हुई परंपराओं में पल रही है। बाद में ज्ञान सूर्य की भी बनने वाली है। इसलिए ब्रह्म शब्द पहले और भानु शब्द बाद में दिया जाता है। और
बाबा शंकर पार्वती गगन बिहार को गए तो वहां पे मतलब तो शंकर जी तो याद में बैठ गए तो उनने पूछा आपसे बड़ा कौन है भगवान जो आपको?
किसने पूछा?
पार्वती जी
है।
आप किसको याद करते रहते
हैं?
तो शंकर जी ने बताया मुझसे बड़े हैं राम जी
है?
तो पार्वती जी मतलब शंकर जी को याद में बैठ गए तो पार्वती जी राम जी की परीक्षा लेने गए तो राम जी ने मतलब वहाँ पे पैर धूल गए। पैर धूल गए पार्वती जी के, सीता का रूप धारण करके गई थी ना
है?
तो वहाँ पे पैर धूल गए थे पार्वती जी के,
पैर
पैर धूल गए कि आपको मेरी माता हो सीता नहीं हो। सर शंकर जी ने कर दिया।
अब आप पूछना क्या चाहते हैं सो पूछो,
मतलब
कथा कहानियाँ बाद में बताओ। आप मूल बात क्या पूछना चाहते हैं?
बात ये है इधर तो उन्होंने फिर नाम दिया
है
शंकर जी ने पैर, उधर से शंकर जी ने पैर मतलब हाथ जोड़ लिए
है
और इधर से राम जी ने पैर जोड़ लिए
है।
इसका अर्थ क्या
है? इसका अर्थ ये है कि रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम कहा जाता है। योगी लोग जिसमें बुद्धि से मन से रमण करते हैं वो राम कहा जाता है। मन बुद्धि से जिसको याद करते हैं वो साकारी स्टेज वाला होता है या निराकार होता है? याद निराकार को किया जाता है और पूजा साकार की जाती है। तो योगी जिन्हें कहा जाता है वो योगी लोग किसमें मन बुद्धि से रमण करते हैं, साकार में या निराकार में है? अरे निराकार को राम कहा जाता है, साकार को कृष्ण कहा जाता है। तो राम वाली आत्माएं जब निराकारी स्टेज में टिकी हुई होती है और सदाकाल के लिए संगम युग में निराकारी स्टेज धारण कर लेती है तब वो शिव शंकर एक कहा जाता है। वो शंकर किसको याद करता है? उस साकार को याद करता है या अपने ही निराकार रूप को याद करता है? किसको याद करता है? निराकार को याद करता है। और जो साकार राम कहा जाता है त्रेता युग में, फेलियर, फेलियर अर्थात देह अभिमान वाला या देही अभिमानी वाला है, फेलियर राम जिसे कहा जाता है वो देह अभिमानी होता है या आत्मा अभिमानी होता है? देह अभिमानी होता है। वो किसको याद करता है? हरे ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में जो फेल होने वाली यज्ञ के आदि वाली आत्मा है जन्म लेकर के दोबारा ब्राह्मणों की दुनिया में आती है या नहीं आती है? हैं? आती है, फेलियर होके आती है या पास होके आती है? हैं? पास होके आती है, फेलियर होके आती है, माने देह अभिमानी सांधा बनकर के आती है। वो किसको याद करती है? बिंदु को याद करती है या साकार में निराकार को याद करती है? पहले बेसिक में आती है कि पहले एडवांस में? पहले बेसिक ज्ञान में आती है या पहले एडवांस में आती है? बेसिक में आती है। तो निराकार ज्योति बिंदु को याद करती है या साकार को याद करती है? ज्योति बिंदु को याद करती है। तो वो ज्योति बिंदु ही शिव शंकर भोलेनाथ का अनादि रूप है। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया है कि शंकर के बिना राम की पूजा बेकार है। राम भगवान को कहा जाता है और राम भगवान के बगैर शिव की पूजा बेकार है। और एक भगत गुप्तमत सब कहो कर जोर शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। शंकर कहा ही तब जाता है जब उसमें निराकारी बीज रूपात्मा सदा शिव प्रवेश करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम के बगैर शिव का कार्य नहीं चल सकता और शिव के बगैर हीरो पाठधारी का काम नहीं चल सकता। ये साकार निराकार दोनों का मेल चाहिए। और
बाबा झाड़ के चित्र में ब्रह्मा सरस्वती के अलावा और जो आठ आत्माएं बैठी हैं, झाड़ के चित्र में ब्रह्मा सरस्वती के पीछे आठ आत्माएं दिखाई हैं, उसमें छह स्त्री चोले में हैं और दो पुरुष चोले में हैं, इसका क्या कारण?
वो तो उस समय जो थे मौजूद मुखिया उनके चित्र दिखाई दिए। वास्तव में स्त्री पुरुष की बात नहीं है, बात है आत्मिक स्टेज वालों की और देह की स्टेज वालों की। जिनकी अंत तक देह की स्टेज रहेगी वो नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, जो सतयुग में नारायण बनेंगी। जड़ें साकार होती है, जड़ें निराकार नहीं होती। धरणी साकार होती है, धरणी निराकार नहीं होती। और उसमें जो बीज बोया जाता है वो निराकार होता है, बीज को बाप कहा जाता है। इसलिए यज्ञ के आदि आदि में जो आत्माएं आई थी वो निराकारी बीज रूप आत्माएं हैं और उन बीजों में से जो जड़ें निकली आधार मूर्त निकले वो सत्युग में जाकर के नारायण बनते हैं, उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले बनते हैं। बीज तो अपने में संपूर्ण होता है, परंतु जैसी धरणी वैसा ही कमजोर या पावरफुल फल निकलता है। इसलिए बीज रूप आत्माएं सदा शिव बाप समान की स्टेज में टिकने वाली है। थोड़ी ही मेहनत से वो निराकारी स्टेज में टिक जाती है और जो जड़ स्वरूप आत्माएं हैं वो सदाकाल के लिए संगम युग में निराकारी स्टेज नहीं प्राप्त कर सकती। इसलिए उनमें देह अभिमान की कमजोरी बड़ी रहती है। और सतयुग में कम कला वाले नारायण बन जाते हैं। द्वापर युग में कमजोर कमजोर धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो बीज रूप आत्माएं हैं मुठभर वो कन्वर्ट नहीं होती है। हाँ, कोई में हल्का छिलका होता है और कोई में देह अभिमान का मोटा छिलका होता है। जिनमें मोटा छिलका होता है उनको धर्मराज के दंडों की पिटाई ज्यादा सहन करनी पड़ती है। संगम युग में ही उनका छिलका उतर जाता है। और जिनका महीन छिलका होता है वो ज्ञान में आने मात्र से ही वो छिलका उतर जाता है। जैसे कोई बीज होते हैं पानी में भिगोए जाते हैं, भिगोने से ही उनका छिलका अलग हो जाता है। धूप में हवा में रखने की भी दरकार नहीं पड़ती। ऐसे ही ये नौ प्रकार के बीज हैं, अलग अलग धर्मों के बीज। कोई आत्माभिमानी रहते हैं अंतिम जन्म तक और कोई का देह अभिमान का छिलका इतना मजबूत होता है जो देह अभिमान छोड़ते ही नहीं, द्वापर युग शुरू होते ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कौन से 44 साल?
40 वर्ष
जो है वो विशेष उन आत्माओं के लिए है जो कम से कम समय में पढ़ाई पढ़ करके संपन्न स्टेज प्राप्त कर लेती है। और उनकी संख्या है सिर्फ 8। बाकी बाद में नंबरवार है। पति दुनिया में सब पति हाँ जी
विजय माला के आह्वान कर दिया है तो उसको पावन
विजय माला नाम दिया है लेकिन वो विजय माला तब है और तब ही बनती है जब उसमें ज्ञान का सूत्र भी मौजूद हो। अभी तो वो न विजय माला है और न रुद्रमाला है। सिर्फ समझाने के लिए बताया है उनमें स्नेह का धागा विशेष है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, स्नेही आत्माएं हैं। ज्ञान सागर बाप के बच्चे नहीं है डायरेक्ट। हाँ, वो धागा भी जब ज्ञान के सूत्र में मिलकर के एक हो जाएगा और सूत्र में जो जो मन के पिरोए जावेंगे, चाहे वो रुद्रमाला के हो, चाहे वो विजयमाला के हो, वो पक्की विजयमाला कही जाएगी। अभी तो न कोई विजयमाला है और न कोई छाती ठोक करके कह सकता है कि हमने 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। विजयमाला तो बनेगी तब पक्की, जब ज्ञान और योग अर्थात स्नेह दोनों के सूत्र में समान रूप से बंध जाए। वो प्रवृत्ति की माला है। अभी तो सारी दुनिया में निवृत्ति मार्ग का पसारा है, प्रवृत्ति का पसारा नहीं है।
जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें विष्णु के हाथ में जो कमल दिखाया गया है उसका मुंह ऊपर है, और जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है उसमें जो कमल है उसका मुंह नीचे ऐसा। त्रिमूर्ति के चित्र में विष्णु के हाथ में जो कमल दिखाया गया है उसका मुंह ऊपर है,
कहाँ ऊपर है,
नीचे है, और लक्ष्मी नारायण के चित्र में ऊपर है।
लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या है ऊपर?
कमल का मुंह।
जो त्रिमूर्ति का चित्र है वो त्रिमूर्ति प्योर संगम युग की यादगार है, जिस संगम में कलयुग भी जुड़ा हुआ है और सतयुग भी जुड़ा हुआ है। कलयुग और सतयुग, तमो प्रधान और सतो प्रधान दोनों का मेल है, इसलिए कमल की नीची स्टेज दिखाई गई है और लक्ष्मी नारायण ये टाइटल सतो प्रधान दुनिया का है या उसमें तमो प्रधानता भी मिक्स है? है सतो प्रधान है, प्रकाश ही प्रकाश की दुनिया में दिखाया गया है, इसलिए वो ऊपर है। और हाँ जी, अरे उनमें सब पतिव्रता होती है क्या? जो पतिव्रता नारियां होती है उनके लिए बताया है कि उनके अंदर ये रग रहती है कि जन्म जन्मांतर हमको यही मिले पति के रूप में, कोई दूसरे व्यक्तित्व मात्र से उनका संसर्ग संपर्क संबंध नहीं जुटता, इसलिए वो अगले जन्म में उससे जाकर के मिलती है। बाकी सब तो ऐसी नहीं होती, सती होगी तो जरूर मिलेगी। अब वो राजा रानी बनकर के मिले या साधारण व्यक्तित्व बनकर के मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके साथ साथ नहीं है, उसके साथ छह सागर और है। अलग अलग तरीके से ज्ञान दिया जाएगा, जैसे सात सागर है ऐसे ही सात नारायण भी है। क्या? हाँ जी, वो संपूर्ण सागर नहीं है, सात सागर मिलकर के जब एक सागर बन जाते हैं तब वो ज्ञान सागर कहा जाता है। है? वो अपनी अपनी सीमा में बने हुए हैं। जो अधूरे सागर है बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, और हाँ जी है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक नॉलेज का रिजल्ट सामने आया। बेसिक नॉलेज में जिनको देवियां समझ बैठे भगत लोग, वो भक्त लोग जब ज्ञान में आ जाते हैं एडवांस में, तो उन देवियों को देवी समझते हैं या राक्षसी समझते हैं? है? क्या समझते हैं? राक्षसी समझते हैं। बुद्धि में बैठ जाता है कि ये पूजा करने योग्य देवियां नहीं बनी है, ये तो राक्षसियों का रूप है, इसलिए उनके मान मर्तव्य को जो ज्ञान सागर प्रत्यक्ष होता है उसके ज्ञान जल में डुबोए देते हैं, और डुबोने वाले ज्यादातर पुरुष होते हैं या कन्याएं माताएं होती हैं? हैं? पुरुष ही होते हैं। और ऐसे ही एडवांस में भी होगा? है? क्या बोल रहे हैं? अंत में आठ में ही ज्ञान रहेगा, प्रैक्टिकल जीवन में यह सभी कन्याओं माताओं पुरुषों में ज्ञान रहेगा। है? आठ में ही रहेगा। बाकी हाँ, एडवांस में भी कन्याओं माताओं की संख्या ज्यादा होती है और पुरुषों की संख्या कम होती है। बल पुरुषों की संख्या कम हो परंतु फिर भी वर्चस्व ज्यादा पुरुषों पर रहता है या ज्यादा संख्या वाली कन्याओं माताओं पर रहता है? हैं? पुरुषों पर रहता है। ये परंपरा अभी भी एडवांस में देखी जाती है। कोई पुरुष अपनी पत्नी को आत्मा आत्मा भाई भाई का दर्जा नहीं दे रहा है प्रैक्टिकल जीवन में। अगर देने वाला होगा तो पूरा ही स्वतंत्र छोड़ेगा, और जब कन्या माता अपने परिवार में अपने को स्वतंत्र समझेगी तो वो ईश्वर का साथ देगी तन मन धन से, या परिवार में बंद करके रहेगी है ईश्वर का साथ देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, माताएं देखा जाता है समर्पित जीवन में कम निकल रही है, क्योंकि पुरुषों के बंधन में है। चाहना होते हुए भी, चाह करके भी माताएं बंधन में है और कन्याएं ज्यादा समर्पित हो रही है। जिनके अंदर जीवन का अनुभव ही नहीं है वो समर्पित हो रही है, और जिनके अंदर जीवन का अनुभव भी है उनको बांध करके रखा हुआ है, और वो बांधने वाले सब रावण संप्रदाय है। मुख से कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई, और माताओं ने दाढ़ी मूछ वाला बनकर के पिछले जन्मों में बंधन में बांधा होगा। अब जिस जन्म में बांधा था उस जन्म में तो ज्ञान नहीं था, इसलिए ज्यादा दोष नहीं लगता है, और अभी वर्तमान जन्म में तो ज्ञान है, और ज्ञान होने के कारण बांधा बूंदी नहीं करनी चाहिए। बांधा बूंदी करते हैं इसका मतलब रावण संप्रदाय है। सीताओं को जेल में रह करके सहन करना पड़ता है, इसलिए बोला है तुम सब सीताएं हो। पुरुष सब है दुर्योधन दुशासन, मारे गए बे आई लाल।
बाबा अनुसुईया देवी रहती हैं तो वो तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु और शंकर को बालक बनाकर गोद में लेती हैं, तो क्या वो मतलब ये जो तीनों देवियां हैं उनसे भी ज्यादा पावर की है?
क्या नाम दिया?
अनुसुईया देवी।
अन्नपूर्णा बोला भी
नहीं।
अनुसुईया के लिए दिखाते हैं इतनी पवित्र थी, जिसके पति का नाम क्या था? अत्रि। त्रि माने तीन, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन आ माने नहीं, अर्थात जो तीन देवताओं की कोटि में नहीं है, एक ही है, वो है अत्रि। वो कौन है? ना उसको ब्रह्मा कहेंगे नीची स्टेज वाला, ना उसको विष्णु कहेंगे मध्यम स्टेज वाला स्वर्ग का देवता, और ना उसको शंकर कहेंगे। देवताओं में महादेव बड़े से बड़े देवता भी नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ कहेंगे गॉड फादर, भगवान। न वो देवताओं की लिस्ट में कहा जाता, न महादेव की लिस्ट में कहा जाता, और न मनुष्यों की लिस्ट में कहा जाता। उसको कहेंगे अत्री। कौन सी आत्मा हुई है? अरे शिव बाबा वो संपन्न स्टेज है जहां वो सिर्फ हेवनली गॉड फादर है, जिसके लिए गायन है, भगवान आते हैं तो भगवान भगवती बनाते हैं। भगवान भगवती को देवी देवता नहीं कहेंगे,